लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि प्रायः आपराधिक तस्करी के शिकार बनने वाले हमारे आप्रवासी भाइयों और बहनों की पुकार सुनी जाए तथा उनकी पुकार हमारे चिंतन का विषय बने। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है देवदूत प्रार्थना के पूर्व दिया गया संत पापा फ्रांसिस का संदेश, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तुता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं फादर संजय दिलीप एक्का। वैटिकन स्थित संत पेट्रस महागिरजाघर के प्रांगण में रविवार 16 फरवरी को संत पापा फ्रांसिस ने भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया। देवदूत प्रार्थना के पूर्व उन्होंने विश्वासियों को संबोधित कर कहा,
कारी फ्रतेली ए सोरेले, बुंजोर्नो।
अति प्रिय भाइयों एवं बहनों, सुप्रभात।
इल वांजेलो दी ओजी è tratto dal discorso della montagna e affronta l'argomento del adempimento della legge.
आज के सुसमाचार पाठ को पर्वत प्रवचन से लिया गया है और यह नियम पालन करने के मुद्दे को प्रस्तुत करता है कि हम किस तरह नियम पूरा करें और कैसे करें। यीशु अपने श्रोताओं को मदद करना चाहते हैं ताकि वे मूसा को दी गई संहिता को अच्छी तरह समझ सकें। उनसे आग्रह करते हैं कि वे ईश्वर के सामने खुले हों, जो नियम के द्वारा सच्ची स्वतंत्रता और जिम्मेदारी की शिक्षा देते हैं। यह स्वतंत्रता के साधन को जीना है। संत पापा ने नियमों का पालन करने का प्रोत्साहन देते हुए कहा,
Non dimentichiamo questo. Vivere la legge come uno strumento di libertà.
हम इसे ना भूलें, नियम को स्वतंत्रता के साधन के रूप में जिए जो हमें मुक्त होने में मदद देता है, पाप और वासना के गुलाम से बचाता है। हम युद्ध की बात सोचते हैं, उसके परिणामों पर चिंतन करते हैं। हम उस छोटी लड़की की याद करें जो सीरिया में 2 दिन पहले ठंड से मौत की शिकार हो गई थी। इस तरह की अनेक घटनाएं हैं, यह वासना का परिणाम है। और जो लोग युद्ध करते हैं वे अपने वासना को नियंत्रित नहीं कर सकते, वे नियम पालन करने में असफल हो जाते हैं। संत पापा ने कहा,
Quando si cede alle tentazioni e alle passioni,
यदि आप प्रलोभन और वासना के गुलाम हो जाते हैं तब आप अपने जीवन के मालिक नहीं रह जाते बल्कि अपनी इच्छाओं और जिम्मेदारियों को संभालने में भी असमर्थ हो जाते हैं। यीशु का प्रवचन 4 प्रतिपदों में संरचित है जिसको इस सूत्र से व्यक्त किया गया है। तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ। ये प्रतिपद दैनिक जीवन की विभिन्न समस्याओं में प्रकट होते हैं, जैसे हत्या, व्यभिचार, तलाक और सौगंध। यीशु उन संहिताओं को नष्ट नहीं करते जो इन समस्याओं से संबंधित हैं, बल्कि उनके पूरे अर्थ को समझाते हैं और बतलाते हैं कि उनका पालन किस मनोभाव से किया जाना चाहिए। वे नियम के पालन की औपचारिकता से उनके ठोस अनुपालन को प्रोत्साहन देते हैं। वे नियम को हृदय में स्वीकार करने की सलाह देते हैं जो हम सभी के इरादों, निर्णयों, शब्दों एवं भावनाओं का केंद्र है। भले और बुरे कार्य का उद्गम स्थान हृदय ही है। संत पापा ने नियम पालन का महत्व बतलाते हुए कहा, अपने हृदय में ईश्वर के नियम को स्वीकार करने के द्वारा हम समझते हैं कि जब हमने अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं किया तब हमने अपने आप को एवं दूसरों को एक ही समान मार डाला, क्योंकि घृणा, बदला और विभाजन भाई बहन के प्रेम को मार डालता है जो आपसी संबंध की नींव है। यह बात युद्ध के लिए लागू होती है किंतु जुबान के लिए भी, क्योंकि भाषा मार डाल सकती है। ईश्वर के नियम को अपने हृदय में स्वीकार करने के द्वारा हम समझ सकते हैं कि हमारी चाहतों को मार्गदर्शन की जरूरत है, क्योंकि हम जो चाहते हैं वह सब कुछ प्राप्त नहीं कर सकते और ना ही सब कुछ अपने स्वार्थ एवं आधिपत्य की भावना से हासिल किया जा सकता है। यदि हम अपने हृदय में ईश्वर के नियमों को स्वीकार करेंगे तब हम समझ जाएंगे कि वादा तोड़ने की जीवन शैली को छोड़ना है, साथ ही साथ गलत वादा करने के निर्णय को रोकने के बदले सभी के साथ पूरी ईमानदारी का रवैया अपनाते हुए बिल्कुल वादा नहीं करने की जीवन शैली अपनाना है। यीशु जानते थे कि नियमों का पूरा पूरा पालन करना आसान नहीं है। यही कारण है कि वे हमारी मदद करना चाहते थे, जिसके लिए वे इस दुनिया में आए, ना केवल नियमों को पूरा करने बल्कि अपनी कृपा देने, ताकि उनकी कृपा द्वारा हम ईश्वर की इच्छा पर चल सकें, ईश्वर और अपने पड़ोसियों से प्रेम कर सकें, क्योंकि ईश्वर की कृपा के द्वारा हम हर तरह के नियमों का पालन कर सकते हैं। दूसरी ओर पवित्रता का अर्थ कुछ नहीं है बल्कि उस कृपा को सुरक्षित रखना है जिसको उन्होंने हमें मुफ्त में प्रदान किया है, उस हाथ को स्वीकार करना है जो लगातार हमारी ओर बढ़ता है, ताकि हमारा प्रयास एवं समर्पण उनकी सहायता से बल प्राप्त करे जो भलाई एवं दया से पूर्ण है। तब संत पापा ने विश्वासियों से कहा,
यीशु जी ci chiede di progredire sulla via dell'amore che lui ci ha indicato.
आज यीशु हमें प्रेम के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं, उस रास्ते पर जिस पर वे स्वयं चले और जो हृदय से शुरू होती है, यही ख्रिस्त जीवन का रास्ता है। संत पापा ने प्रार्थना की कि धन्य कुआरी मरियम हमें अपने पुत्र के दिखाए मार्ग पर चलने, सच्ची खुशी खोजने और सभी को न्याय एवं शांति फैलाने में मदद करे। इतना कहने के बाद संत पापा ने भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया तथा सभी को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद दिया।
Angelus Domini nunciavit Mariae,
concepit Spiritu Santo.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa
benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
आमीन।
देवदूत प्रार्थना के उपरांत उन्होंने देश विदेश से एकत्रित सभी तीर्थयात्रियों एवं पर्यटकों का अभिवादन किया। उन्होंने कहा, मैं रोम वासियों एवं आप सभी तीर्थयात्रियों का अभिवादन करता हूँ, विशेषकर क्रोएशिया, सर्बिया, फ्रांस और स्पेन के तीर्थयात्री तथा मैड्रिड के विद्यार्थी। उन्होंने ब्लांका विला, फूजी, अप्रेलिया, पिस्कारा और त्रेवीजो के विश्वासियों का अभिवादन किया तथा सेरावल्ले, स्क्रिविया, क्वार्टो अल्तिनो एवं रोसोलिना के दृढ़ीकरण प्राप्त युवाओं की याद की। अंत में उन्होंने प्रार्थना का आग्रह करते हुए सभी को शुभ रविवार की मंगल कामनाएं अर्पित की।
E a tutti auguro una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
सारे जगत से प्यार किया तू, उस पे अपना जीवन दिया मेरा प्रभु, मेरा प्रभु, मेरा प्रभु मुक्तिदाता। सारे जगत से प्यार किया क्रूस पे अपना जीवन दिया मेरा प्रभु, मेरा प्रभु, मेरा प्रभु मुक्तिदाता। सारे जगत से प्यार किया अपना जीवन दिया मेरा प्रभु, मेरा प्रभु, मेरा प्रभु मुक्तिदाता। सारे जगत से प्यार किया प्यार किया मेरा प्रभु मेरा प्रभु मेरा प्रभु मुक्तिदाता सारे जगत से प्यार किया क्रूस पे अपना जीवन दिया मेरा प्रभु मेरा प्रभु मेरा प्रभु मुक्तिदाता सारे जगत से प्यार किया
आप वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं और अब लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने परम धर्म पीठे कलिसियाई अकादमी के अध्यक्ष धर्माध्यक्ष जोसेफ मरीनो को प्रेषित 11 फरवरी के पत्र में इस बात हेतु निर्देश दिया है कि परम धर्म पीठे कलिसियाई अकादमिक में राजनयिक सेवा हेतु प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों को अपने धर्म प्रांत में एक साल की प्रेरितिक सेवा देनी होगी। संत पापा ने कहा, मुझे विश्वास है कि इस तरह के अनुभव युवाओं के लिए फायदेमंद साबित होंगे, विशेषकर उनके लिए जो भविष्य में परम धर्म पीठीय सेवारत प्रतिनिधियों के साथ हाथ बटाने हेतु बुलाए जाएंगे, जिन्हें संत पापा अपने प्रेरितिक राजदूत की भांति विशिष्ट कलिसियाओं हेतु प्रेषित करेंगे। संत पापा ने सन 2015 को परम धर्म पीछे कलिसियाई अकादमिक को दिए गए अपने संबोधन में कहा था, प्रेरितिक कार्य आपको एक दिन दुनिया के हर कोने में ले जाएगी। यूरोप को अपने में जागने की जरूरत है, अफ्रीका अपने में मेल मिलाप हेतु प्यासी है, लातिनी अमेरिका को पोषण और आंतरिकता की जरूरत है, उत्तरी अमेरिका अपनी जड़ों को खोज रही है, सेवा अपने बहिष्करण के कारण परिभाषित करने में असक्षम है, एशिया और ओशिनिया को अपनी पैतृक संस्कृतियों की विशालता के संग वार्ता की एक बड़ी चुनौती है। अपने पत्र के अंत में संत पापा इस बात पर जोर देते हैं, कलिसिया में बढ़ती हुई सारी चुनौतियों का सामना करने और दुनिया को सकारात्मक दृष्टि से देखने हेतु परम धर्म पीठ को उन पुरोहितों की आवश्यकता है जो पुरोहिताई और प्रशिक्षण में दक्षता प्राप्त करने के साथ साथ अपने धर्म प्रांत के बाहर प्रेरिताई कार्य करने का अनुभव प्राप्त हो, जिससे वे सुसमाचार की सेवा में खरा उतरें। इस संदर्भ में संत पापा ने मान्यवर मरीनो को वैश्विक कलिसिया की सेवा हेतु अपने विचारों से अवगत कराया और इसे पुरोहिताई प्रशिक्षण का एक अभिन्न अंग बनाने की मांग की, जो नए सत्र 2020-21 से शुरू की जाएगी। इस प्रशिक्षण को और गहराई तक ले जाने के संबंध में सार्वभौमिक कैथोलिक कलिसिया के धर्म गुरु ने लिखा, यह हमें परम धर्म पीठीय विभाग के साथ साथ परम धर्म पीठीय प्रतिनिधियों से, जो निश्चित रूप से आपको मूल्यवान सहायता प्रदान करेंगे, जिससे आप स्थानीय कलिसियाओं के संग अपने को संयुक्त कर सकें, जो विद्यार्थियों के रूप में आपका स्वागत करने हेतु सदा तैयार हैं। संत पापा ने कहा कि मैं आशा करता हूं कि यह वैश्विक कलिसिया के दूसरे पुरोहितों को प्रोत्साहन प्रदान करेगा, जिससे वे कलिसिया के कार्य हेतु दूसरे धर्म प्रांतों में आगे आने हेतु अपने को समर्पित करेंगे। धर्माध्यक्षकों की आगामी धर्म सभा का आयोजन सन 2022 के शरद ऋतु में किया जाएगा, जिससे अधिक से अधिक सहभागिता सुनिश्चित की जा सके। उक्त बात की जानकारी धर्मसभा के सामान्य धर्माध्यक्षीय परिषद में 6 फरवरी को निश्चित की गई। आगामी धर्मसभा की विषय वस्तु के बारे में कहा गया कि यह युवाओं पर हुई धर्मसभा 2018 के उपरांत प्रेरितिक प्रबोधन क्रिस्तुस विविध के अनुरूप किए गए कार्यों पर विचार विमर्श करते हुए उसका मूल्यांकन करेगी। कार्यकारिणी समिति ने कार्य सत्र में उल्लेख करते हुए प्रवासन हेतु भाई बहनों के एकजुटता की विषय वस्तु पर बल दिया। सभा की शुरुआत धर्माध्यक्षीय धर्म सभा के अध्यक्ष कार्डिनल लोरेंजो बाल्दसेरी की घोषणा से हुई, जिन्होंने कार्डिनल लुइस अंतोनियो तागले का नाम घोषित किया, जो सुसमाचार प्रचार हेतु गठित परम धर्म पीठ के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। उन्होंने पाकिस्तान के कार्डिनल जोसेफ कुट्टोस कराची महाधर्म प्रांत के महाधर्माध्यक्ष का नाम घोषित किया, जो परिषद में नए सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए हैं। संगोष्ठी के दौरान कार्डिनल लोरेंजो ने 2019 के कार्यों और परिणामों के विवरण प्रस्तुत किए, जो आने वाले धर्म सभा में चर्चा के लिए संभावित मुद्दे हो सकते हैं। कार्डिनल केविन जोसेफ लोक धर्मियों परिवार और जीवन हेतु गठित धर्माध्यक्षीय परम धर्म पीठ के अध्यक्ष ने युवाओं की धर्म सभा के उपरांत प्रेरितिक प्रबोधन क्रिस्तुस विविध के अनुरूप संपादित हुए कार्यों एवं परिणाम की रूपरेखा प्रस्तुत की। संत पापा फ्रांसिस ने सोमवार को अपने ट्वीट संदेश में लिखा, हम अकेले अपने में संतुष्ट नहीं हो सकते हैं, हमें अपनी आत्मनिर्भरता को बेपर्दा करने की जरूरत है, अपने में बंद होने के मनोभावों पर विजयी होने, अपने आप में छोटे होने की अनुभूति की थाह लेने, अपने में साधारण और उत्साही बनने की आवश्यकता है, जिससे हम अपने को ईश्वरीय कृपा और दूसरों के लिए प्रेम से भर सकें। संत पापा फ्रांसिस ने इबाम्बिनी सोनो स्पेरांजा नामक शीर्षक से बच्चों के नाम एक छोटी पुस्तिका प्रकाशित की है, जो हमें स्वीकारने और अपने जीवन को साझा करने और प्रेम करने हेतु प्रेरित करता है। पुस्तिका में लेख ला चिविता कैथोलिका के संचालक फादर अंतोनियो स्पदारो द्वारा चुने गए हैं, जिसे शेरे ब्राड ने चित्रित किया है। इस पुस्तिका का विमोचन वैटिकन के बाम्बिनो जीसु बच्चों के अस्पताल में अस्पताल के संचालक मारियेला एनोक और लोगों में सुसमाचार प्रचार हेतु गठित विभाग के नए अध्यक्ष कार्डिनल लुइस तागले की उपस्थिति में की गई। कार्डिनल ने पुस्तिका की विमोचन के दौरान कहा, जहां बच्चे नहीं हैं, वहां भविष्य नहीं है। उन्होंने पुस्तिका के संबंध में कहा कि इस किताब में संत पापा बच्चों से साधारण शब्दों के द्वारा सीधे तौर पर बातें करते हैं, जो उन्हें उदार होने, रोने से नहीं डरने, जीवन में अच्छे कार्य करने, खुशी में मुस्कुराने और नाचने की सलाह देते हैं। आप और मैं दुनिया को और भी सुंदर बना सकते हैं, और संघर्ष में विजय पाने का सबसे उत्तम उपाय उसकी शुरुआत ही नहीं करना है। ये सारी बातें हमारे लिए संत पापा की ओर से इस पुस्तिका में व्यक्त किए गए हैं। पुस्तिका के सबसे प्रथम पृष्ठ में संत पापा कहते हैं, जब मैं आपके समान एक बच्चे को देखता हूँ तो मेरे हृदय में आशा उमड़ पड़ती है। इन शब्दों के बगल में एक दर्पण है, जहाँ एक बच्चा या बच्ची अपने चेहरे को देख रहा है। उधर बुर्किना फास के योगा प्रांत में रविवार को प्रोटेस्टेंट गिरजाघर में हुए एक आक्रमण में ख्रिस्तियों और मुस्लिम दोनों समुदाय के 24 लोगों की मारे जाने की खबर है। और इसी के साथ वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त होता है। अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।